ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः सम्यक् दर्शन चरण गुण पायकु कर्म कृपाय केवल ज्ञान उपाय प्रभु वये भजो शिवराय जिन वाणी के ज्ञान ते हो तत्त्व श्रद्धा चरण धारी के पावे पद निर्वाण नेमि चंद आह्लाद कर माधव चंद प्रधान नमो जासउ जासते जाने निज गुण थान लब्धि सार को करिय भाव भव भाव सब सहज भाव निज पाय जय अपुनर्भव भावमय भये परम शिवराय।
यहाँ हम जीवों के पांच भावों की चर्चा कर रहे हैं, उसके साथ साथ करणानियोग के आधार से ये पंचलब्धि जो पुस्तक है उसके आधार से, ये पुस्तक भी लब्धि सार के आधार से लिखी हुई है, तो उसी के आधार से हम कुछ स्पर्धकों की यहाँ चर्चा कर रहे थे कल, उसकी बात हम आगे बढ़ाएंगे, शाम का विषय और शाम को और आगे बढ़ाएंगे। जो हमने गुणस्थान में शुरू की थी चर्चा पांच भावों की, अब यहाँ कल हमने वर्ग वर्गणा और स्पर्धक इनका स्वरूप देखने की थोड़ी कोशिश की थी, फिर दोबारा उसको थोड़ा दोहराते। ये शब्द हम पहली बार सुनते हैं तो हमें कुछ ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। जीव हर समय जो कर्म का बंध करता है तो वो बंध चार प्रकार से कहने में आता है या होता है, तो उसमें विशिष्ट प्रकृति बनती है, उसको कहते हैं प्रकृति बंध। जितनी संख्या में कर्म परमाणु बनते हैं, जो अनंत संख्या में बनते हैं, उसको कहते हैं प्रदेश बंध। जब कर्म बनता है तभी यह निश्चित होता है वो कितने काल तक जीव के साथ रहेगा और कितने काल तक उसका उदय होता रहेगा निरंतर, उसको कहते हैं स्थिति। और वो फल कैसा फल देगा कर्म, उसके परमाणुओं में फल देने की कितनी शक्ति है, उसको कहते हैं अनुभाग। तो स्थिति और अनुभाग जीव के कषायों के अनुसार बनते हैं, और प्रदेश और प्रकृति योग से बनती। ये अभी अपना ये विषय अभी नहीं चल रहा है, अभी यहां हम अनुभाग की चर्चा कर रहे हैं। तो अनुभाग बनता है यानी क्या होता है, तो कर्म परमाणु बनते हैं उसमें विशिष्ट अनुभाग होता है। अभी अनंत कर्म परमाणु बनते हैं तो सभी अनंतों का समान अविभाग प्रतिच्छेद नहीं होता, कोई जो कर्म परमाणु है वो कम डिग्री वाले कम अनुभाग वाले है, कोई ज्यादा वाले कोई और ज्यादा वाले कोई और ज्यादा है। जैसे हम स्थिति में भी देखते हैं कि जिसने मान लेते वो सत्तर कोड़ा कोड़ी का सबको एग्जाम्पल मालूम है, दर्शन मोह का उत्कृष्ट बंद स्थिति वाला, तो ऐसा कोई यदि बंद करे, ये तो स्थिति बांधी उसने, तो उसमें 7000 वर्षों के बाद उसका उदय शुरू हो जाता है। 7000 वर्षों को कहते हैं आबाधा काल। उस आबाधा काल में उसमें से उस समय बंधे हुए परमाणुओं में से कोई भी परमाणु उदय में नहीं आता। पूर्व में बंधे हुए तो उदय में आता ही रहेगा, है ना, मिथ्या तो गुणस्थान है तो पहले बंधे हुए तो उदय चल ही रहा है। उस समय में बंधे हुए कब उदय में आएंगे, 7000 वर्ष और एक समय होने पर उदय शुरू हो जाएगा और लगातार प्रति समय उदय चालू ही रहेगा। कब तक? 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों तक एक समय में की हुई कमाई इतने काल तक भोगते हैं, सागरों तक भोगते, कोड़ा कोड़ी सागरों तक। उसका उदय भी चलेगा, जीव के वैसे परिणाम भी होंगे। तो आबाधा काल छोड़कर कर्मों का उदय होता है। तो आबाधा काल को स्थिति में से घटा देना, जैसे लाख वर्ष के हम फॉर एग्जाम्पल लेते, लाख वर्ष इतनी कम नहीं तो ज्यादा ही बंधेगी, लाख वर्ष की किसी ने स्थिति बांधी तो उसमें से हम अभी समझ लेते फॉर समझने के लिए एक दिन उसमें से घटा दिया, तो एक दिन जाने के बाद दूसरे दिन से लगाकर लाख वर्षों तक उसका कंटिन्यूअस निरंतर उदय रहेगा। आबाधा काल में उदय नहीं होता, आबाधा काल के बाद प्रति समय उदय रहता है, हर समय कुछ न कुछ परमाणु उदय में आते ही रहते, इसको कहते उसका उदय काल। अब यहां तो हम हर कर्म में आबाधा काल होता है, अभी ये जो हर कर्म में जो आबाधा काल होता है उसका प्रपोर्शन कितना है, तो हमने 70 कोड़ा कोड़ी के लिए कितना देखा, 7000 यानी 7700 यानी एक कोड़ा कोड़ी सागर, आगे सागर भी लिखना, एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के लिए 100 वर्ष की आबाधा होती है। किसी ने एक कोड़ा कोड़ी सागर इतना कर्म का बंध किया तो 100 साल के बाद उसका उदय शुरू हो जाएगा, ऐसा भी वो कंटिन्यूअस ही रहता है। जब उदय शुरू हो जाता है वो कंटिन्यूअस रहता है, उसमें बीच में कोई गैप नहीं पड़ता, हमेशा ही चल। अभी आयु में थोड़ा अंतर है, आयु कर्म बंधा अभी वो त्रिभाग में बनता है। अभी जैसे कोई 81 वर्ष अभी जिसकी मनुष्य आयु चल रही है और उसके दो तिहाई यानी कितने 57-54 वर्ष चले गए, 27 वर्ष बाकी है, उसके पहले अंतर्मुहूर्त में आयु बंध का पहला अवसर होता है। मान लेते हैं किसी ने तभी आयु बांधी, देव की बांधी या कोई भी बांधी, कितनी भी बांधी उससे कुछ लेना नहीं, ख्याल है, कोई 33 सागर का भी बांधेगा मुनि होकर, है ना, या कोई अन्य भी मनुष्य में भी जाएगा, 3 इंच में भी जाएगा, अंतर्मुहूर्त की भी जो कुछ है, तो उसने आयु बांधी, तब उस आयु का जो बांधी हुई आयु है उसका उदय कब शुरू होगा, जब यहां 81 साल में मरेगा तब मनुष्य आयु खत्म होगी, तब आगामी हम ले समझते कि देवायु बांधी, तो देवायु का उदय तब शुरू होगा। तो देवायु की आबाधा कौन सी कहलाएगी, ये 27 साल जो है वो कितनी आयु बांधी उस पर उसका आबाधा काल नहीं है। जैसे ज्ञानावरण दर्शनानंद मोहिनीअंतरा अन्य कर्मों में जितनी स्थिति बांधता है उसके प्रोपोर्शन में उसकी आबाधा होती है, आयु में ऐसा नहीं है। आगामी एक आयु ही, एक अभी हम इस भव में एक ही आयु को बांधते हैं, आगामी एक ही भव संबंधी आयु बांधते हैं, आयु बंधने के बाद मरण तक उसको आगामी आयु का आबाधा कहेंगे, आबाधा काल कहेंगे। अंतर्मुहूर्त है, जब बंधे आयु जब बंधेगी तब से लेकर मरण तक का उसको आबाधा काल कहेंगे। ये आयु का आबाधा काल कभी चेंज नहीं होता, इसका अर्थ है जो हम ये कदली घात से मरण कहते हैं ना, आपने सुना होगा, जैसे 81 वर्ष की आयु बांधकर है हम आए हैं और कोई 10 साल का लड़का है और एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होगा, ये सारे जो 81 वर्ष के परमाणु पड़े हैं हर समय उदय में आने वाले, वो तो थोड़े ही समय में अंतर्मुहूर्त में ये सब खिर जाते हैं और वो जीव वहां मर जाता है, तो इसको कहते हैं कदली घात से मरण होना, अकाल मृत्यु जिसको कहते हैं, मनुष्य 3 इंचों में जो हो सकती है ऐसी। एक बार जिसकी आयु बांधी है अब वो बीच में मर नहीं सकता। हम ऐसे कितने व्यक्ति देखते हैं, इतने वृद्ध हो गए, इतने रोगी है, इतना कुछ है, मगर वो कुछ भी करो वो मरेगी नहीं, क्योंकि अभी आयु जिसकी बंधी है उसके बाद उसका आगामी आयु का आबाधा काल भी फिक्स हो गया है, अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा,
कदली घात मरण इनका नहीं होगा,
उसका नहीं होगा, कदली घात मरण उसी को होगा कि अभी एक्सीडेंट होगा तो पहले में पहले आयु भी बांध लेता है और वो उदीर्णा से उसकी आयु भी खिर जाते हैं। अभी अपना विषय चेंज हो रहा है परंतु ये सहज उत्सुकता होती इसलिए ये बात यहां बता दी। हमारी बात तो अनुभाग की हम कहने जा रहे, ये तो स्थिति की बात हुई, स्थिति और आबादा। जिस समय कर्म बनते हैं उस समय स्थिति भी उसमें पड़ती है और उसी समय प्रत्येक परमाणु में अपना अपना जो कुछ फल देने की जो शक्ति है वो भी उसमें पड़ी है। अनंत परमाणु है और अलग अलग परमाणुओं में अलग अलग शक्ति है, तो जिन परमाणुओं में सबसे कम शक्ति है ऐसे परमाणुओं को ही वर्ग कहते हैं और ऐसे समान अभिभाग वाले परमाणुओं के समूह को कलम ने एक नाम दिया था, याद है, वर्गणा। तो उसको हम कम अनुभाग वाली, उसको पहली वर्गणा कहेंगे या जघन्य वर्गणा कहेंगे। फिर उससे एक अभिभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है उसको कहेंगे दूसरी वर्गणा, और एक अभिभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है उसको कहेंगे तीसरी वर्गणा। ऐसे अनंत वर्गणाओं तक एक पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ये वर्गणाएं कहलाएगी। जब स्टार्टिंग पॉइंट जो वर्गणा थी ना, पहली वर्गणा हमारी, उसका अभिभाग प्रतिच्छेद दो गुना हो जाएगा, उसके पहले वाली वर्गणा तक सभी वर्गणाओं के समूह को हम स्पर्धक कहेंगे। क्या रहता है कि फिर दोबारा देखिए वहां नीचे ये जो गोल गोल लिखे है ना, तो ये एक एक वर्गणा समझना। एक वर्गणा में बहुत सारे परमाणु होते हैं, अनंत परमाणु होते हैं, एक एक वर्गणा में अनंत परमाणु होते हैं। और ऐसी एक वर्गणा किसको कहेंगे, जिसमें जिसमें समान अभिभाग प्रतिच्छेद है उसके प्रत्येक परमाणु में। अभी हम मान लेते हैं 100 है, एक्चुअली होता है यथार्थ में कितना, तो अनंत होता है। मिनिमम अभिभाग प्रतिच्छेद भी अनंत होता है, हमने यहां समझाने के लिए 100 मान लिया। अभी ये 100 वाला समूह है उसको हम पहली वर्गणा कहेंगे, 101 वाला जो समूह है उसको हम कहेंगे दूसरी वर्गणा, तीसरी वर्गणा, चौथी वर्गणा। जब 100 से अभिभाग प्रतिच्छेद 200 हो जाएगा, उसके पहले तक की सभी वर्गणा आए 199 तक की, उन सभी वर्गणाओं के समूह को हम एक स्पर्धक कहेंगे, पहला स्पर्धक। 200 से लेकर 299 तक कहेंगे ये दूसरा स्पर्धक है, 300 से लेकर 399 तक कहेंगे ये तीसरा स्पर्धक है। प्रत्येक स्पर्धक में अनंत वर्गणा और एक एक वर्ग में अनंत कर्म परमाणु, ऐसे स्पर्धक भी अनंत होते हैं। यानी एक समय में जीव इतने सारे परमाणु बांधता है और उसके ये इस तरह से हम दिखाते हैं। जीव के प्रदेशों में कहीं ऐसे कतार से नहीं होते हैं परमाणु, वो तो जहां तहां परमाणु फैले हुए हैं और जिसकी जिसकी स्थिति समान है उसको हम निषेक कहेंगे और जिनकी जिनका अविभाग प्रतिच्छेद समान है उसको हम वर्गणा कहेंगे, उनको हम स्पर्धक कहेंगे। क्या ऐसे स्पर्धक प्रत्येक कर्म यानी प्रत्येक प्रकृति के बनते हैं। वही तो मैंने बताया, आत्मा के सर्व प्रदेशों में कर्म जहां तहां है। अभी आपके तिजोरी में नोटों ऐसी वैसी रखी है ना, तो जिसकी जिसकी एक वैल्यू है जिस नोट की, उन सबको हम कहेंगे ये इस एक वाले हैं, 100-100 नोट वाले ये अलग है। भले आपने पर्स में रखे, कुछ तिजोरी में रखे, कुछ कपाट में रखे, जिसकी जिसकी वैल्यू समान है उसको हम क्या कहेंगे, वो एक वर्गणा कहेंगे उसको। ऐसा उसको वर्गणा कहेंगे, भले वो एक साथ जुड़कर रहे या ये परमाणु अलग अलग स्थान पर हो तो भी उसको हम वर्गणा कहेंगे। हाँ, उसको एक वर्गणा वाले कहेंगे क्योंकि उनकी वैल्यू समान है। अब ऐसे जो स्पर्धक है, प्रत्येक प्रकृति के अपने अपने स्पर्धक है। हमने कल घाती कर्मों के स्पर्धकों के चार नाम देखे थे, जिसका अविभाग प्रतिच्छेद का मैंने जघन्य से लेकर उत्कृष्ट अविभाग तक स्पर्धक जो है अनंत होते हैं, उसके चार भाग हमने देखे थे। ये लता भाग रूप कहते उसको, हमने यहां लता लिखा, दारू भाग वाले या दारू भाग रूप, अस्थि भाग वाले और शैल भाग वाले, इनमें क्रम से नीचे से ऊपर की ओर उसकी तीव्रता अधिक है, घाती कर्मों की तीव्रता। जैसे मिथ्यात्व में हम तीव्रता देंगे कि नीचे के मिथ्यात्व कहां से कहां तक है, हमने कल देखा था। ये लता और दारू का अनंतवा भाग, इसमें मिथ्यात्व के कोई स्पर्धक नहीं होते, क्योंकि मिथ्यात्व प्रकृति है वो सर्वघाती प्रकृति है। सर्वघाती प्रकृति के सभी स्पर्धक सर्वघाती होते हैं। अभी हमने ये जो चार नाम लिखे हैं, उसमें से सर्वघाती स्पर्धक कौन कौन से है, तो दारू में से अनंत बहुभाग ऊपर का, अस्थि वाले पूरे और शैल वाले सभी, ये सब जो है वो सर्वघाती स्पर्धक है। मिथ्यात्व के अपने हैं, ज्ञानावरण के अपने हैं, ऐसा हर एक में समझना। ज्ञानावरण में भी जो केवल ज्ञानावरण है उसमें सर्वघाती स्पर्धक पाए जाएंगे। जो मति ज्ञानावरण है, जो प्रकृति कैसी है तो देशघाती है, तो उसमें स्पर्धक कैसे है, तो दोनों प्रकार के, उसमें चारों प्रकार के पाए जाएंगे, शैल अस्थि दारू और लता भाग सब। प्रकृति देशघाती और उसके स्पर्धक दोनों, सर्वघाती भी और देशघाती भी। ऐसा जहां होगा वहीं पर वो क्षयोपशम घटित होता है। हमें वो क्षयोपशम भाव भी समझना था ना, इसलिए इतना स्पर्धक क्या है उसको समझना आवश्यक है, देशघाती और सर्वघाती। और जो जो प्रकृति है स्वयं में भी मति ज्ञानावरण है, तो सर्वघाती उसके स्पर्धक पड़े हैं अंदर परमाणु, तो वो देशघाती रूप हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से सर्वघाती रूप से उदय में आवे तो मति ज्ञान पूरा ही मिट जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। कोई भी जीव मति शुद्ध ज्ञान से रहित होता ही नहीं है, निगोद भी क्यों ना हो, उनके भी उनके योग्य जो कुछ अल्प सा ज्ञान है उतना तो प्रकट रहता ही है। तो वहां वो मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोपशम पाया जाता है। हमने वो क्षयोपशम भाव देखे थे ना, उसमें तीन अज्ञान भी देखे थे। तो क्षयोपशम होता है यानी क्या होता है, उसकी जो परिभाषा है उसको समझने के लिए हम ये स्पर्धकों के नाम जानना आवश्यक है। इसके बाद हम जब क्षयोपशम की परिभाषा घटाएंगे तो वो ख्याल में जल्दी आ जाए। इसका अर्थ क्या है, सर्वघाती स्पर्धक हो, अभी हम प्रकृति का नाम नहीं ले रहे, सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो जावे तो जिसकी वो जिस प्रकृति की बात है उसका प्रतिपक्ष का पूरा घात हो जाए, और देशघाती का उदय हो जावे तो पूरा घात नहीं होगा। घाती कर्म यानी जो स्वभाव का, जिस स्वभाव के बारे में वो कर्म काम कर रहा है उसका कुछ न कुछ अंश प्रकट रहेगा ही। तो अभी हम क्षोभशम ज्ञान होता है इन्हें क्या होता है उसको देखना है। अभी ये स्पर्धकों की चर्चा निकली है तो अघाती कर्मों में भी अपने अपने स्पर्धक होते हैं। अघाती कर्मों में तो दो भेद देखे, कुछ पुण्य प्रकृतियां हैं और कुछ पाप प्रकृतियां हैं। तो ये जो पुण्य प्रकृतियां हैं उसके नाम नीचे से ऊपर अगर हम देखेंगे, जैसे जिसमें तीव्रता कम है, कम पुण्य वाली है, इसे कम फल देने वाली, तो उसका गुड़ खान शर्करा और अमृत, ये पुण्य प्रकृति के नाम है। और पाप प्रकृति के नाम है नीम कांजीर विष और हलाहल, ये ऐसे उसके नाम है। जीव ने बांधे है तो चारों प्रकार के बांधता रहता है, घाती में भी और अघाती में भी बंध तो सभी प्रकार का चल रहा है उसका। परंतु ऐसे मोक्ष मार्ग का स्वरूप ऐसा है कि जब जीव तत्व विचार करने लगता है, तत्व सुनता है, उस पर बार बार विचार करता है, स्वाध्याय करता रहता है, तो ये जो पुण्य जो है पहले बंधे हुए उसका अनुभव बढ़ता रहता है, और पापों का जो पाप प्रकृतियों का अनुभव घटता रहता है अपने आप। तो हम तो पहले क्या कहते हैं, संयोग चेंज करना चाहते, हमारे संयोग ठीक हो जाए बाद में हम स्वाध्याय करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। ये जिसको सच्ची तत्व की लगन लगी है और उसके तो विचारों में ही तत्व चलते रहते हैं, तो उसके अपने आप ये इस तरह से सहज रूप से होता है, उसके अनुकूल ही सब बन जाता है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और संयोग कहाँ अपने है ना सुशीला बहन, अच्छा संयोग होगा तो भेद ज्ञान होगा कि बुरा संयोग होगा तो होगा जरूर। संयोग तो संयोग रूप से स्वीकार करना है, तो वो तो अपने से भिन्न ही है ना, तो हम पहले उसको अच्छा करना चाहते हैं और फिर उससे भेद ज्ञान करेंगे, नहीं समझे? पहले हम शरीर का मेकअप करेंगे फिर उससे भेद ज्ञान करेंगे क्यों? कि मैं ये नहीं हूं, ये जो कुछ क्रीम पाउडर से जो कुछ लिपस्टिक लगाए वो मैं नहीं हूं, ऐसा फिर बाद में भेद ज्ञान करेंगे ना। तो देखो अभी ये हम स्पर्धकों की बात हो गई, अब हमको क्षोभशम क्या है उसको समझना है। पहले में पहले क्षोभशम की परिभाषा हम ये पुस्तक में से देखेंगे, ये पंचलब्धि पुस्तक 50 पृष्ठ है। मैं कहूंगी आप सब दोहराना, मेरे जिसके पास पुस्तक नहीं है उसके भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो अब ये जो स्पर्धक है हर समय कोई ना कोई वहां से उदय रूप हो ही रहे, कर्म का उदय हो रहा है, उदय में भी किसी प्रकृति का उदय होता है, प्रदेश यानी कर्म परमाणु विशिष्ट नंबर में खिर जाते उसको हम प्रदेश उदय कहेंगे, जैसे बंद में हमने 4 देखे थे। स्थिति यानी उस समय खिरने वाले परमाणु खिरेंगे तो एक समय वाली स्थिति खिरेगी, उसकी स्थिति उदय एक समय का होगा है ना। और अनुभाग उदय, उस समय कैसे अनुभाग का उदय चल रहा है, मंद अनुभाग है या तीव्र अनुभाग है, उसको हम कहेंगे अनुभाग उदय। तो उदय में जितने कर्म परमाणु आ रहे हैं उसको हम वर्तमानकालीन कहेंगे, और जो अभी इस समय उदय में नहीं आ रहे हैं परंतु सत्ता में पड़े हैं उसको हम कहेंगे ये भविष्यकालीन स्पर्धक है। तो अभी हम क्षोभशम की परिभाषा में कहूंगी, आप मेरे बाद दोहराना इसको। वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का, वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, यानी वर्तमान काल में जो सर्वघाती स्पर्धक है उनका उदय नहीं होना ही उनका क्षय है, उस रूप से उसका फल नहीं मिल रहा है। वो किस रूप से मिलेगा वो अभी बताएंगे। ये एक कंडीशन हुई कि सर्वघाती का उदय नहीं हो रहा है, उसी को सर्वघाती का क्षय कहते हैं, उदयाभावी क्षय। सर्वघाती सत्ता में से नहीं मिटे हैं, पड़े हैं सभी। दूसरी बात, भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का, उन्हीं यानी सर्वघाती, भविष्यकालीन यानी सत्ता में पड़े हुए, अभी वर्तमान में जो उदय में नहीं आ रहे हैं कुछ काल के बाद उदय में आएंगे है ना, उनकी स्थिति अभी लंबी पड़ी है, तो भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपक्षम, यानी वहां जहां है वहीं पर पड़े हैं, अपनी जगह छोड़कर वो अभी उदय में नहीं आ रहे। अपनी जगह छोड़कर उदय में आवेगे तो वो तो सर्वघाती है, उदय में आ जावे तो सर्वघात हो जावेगा, ख्याल है ना। तो है वहीं पर रहना उसको कहते हैं सदवस्था रूप उपशम। और तीसरी बात कौन सी है इसमें, और वर्तमानकालीन देशवाती स्पर्धकों का उदय, तो जिस रूप से उदय है उस रूप से यहां फल भी मिलेगा। अभी हम निमित्त की भाषा में बात कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा मत समझना कि हम कर्म के अधीन हो गए पराधीन हो गए, ख्याल है। तो वर्तमान में देशघाती स्पर्धकों का उदय होगा। ये देशघाती स्पर्धक कौन से प्रकृति में पाए जाते हैं? हाँ, देशघाती प्रकृति में होते हैं कि सर्वघाती प्रकृति में होते हैं? देशघाती, देशघाती में दोनों ही प्रकार के होते हैं, सर्वघाती भी और देशघाती। और जो सर्वघाती प्रकृति है उसमें अकेले सर्वघाती ही स्पर्धक होते हैं, समझ में आ रहे हैं? अभी हम मिथ्यात्व पर घटित करेंगे या ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण पर लेंगे। केवल ज्ञानावरण में कौन से स्पर्धक है? सभी स्पर्धक सर्वघाती वाले हैं, यानी वो दारू भाग वाले तक ऊपर के। अभी क्या उसमें ये देशघाती सर्वघाती की ये अभी हमने परिभाषा अभी देखी, क्या ये घटित हो सकती है? केवल ज्ञानावरण देशघाती रूप से होकर उदय में आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि सर्वघाती के जो प्रकृति है उसके सभी स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं, वे देशघाती रूप होते ही नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति सर्वघाती है ना। ख्याल में आता है? यानी थोड़ा सा केवल ज्ञान प्रकट हो जावे और थोड़ा ऐसा नहीं हो सकता। अभी बात ख्याल में आती रहे, थोड़ी थोड़ी 1% भी आया जाए तो अच्छा है। ख्याल है ना, पहली बार सुनते तो ऐसा लगता है खूब बहुत कंफ्यूजन है। अब दोबारा आप पुस्तक पढ़ेगी तो और आपको क्लियर हो जाएगी। ये जो स्पर्धक क्या है, वर्ग क्या है, वर्गणा क्या है, हमने कभी सुनी नहीं बातें है, इसलिए पहली बार सुनते तो ऐसा लगता है बहुत कंफ्यूजन है। कोई बात नहीं, उस वही भाषा सुनते रहेंगे पढ़ते रहेंगे तो उसका ख्याल आ जाएगा। हम एक महीने के बच्चे के सामने कितनी बातें करते हैं, उसकी बारात भी ले आते हैं सब कुछ, कौन कौन आएगा बारात में, वो हाथी झूलेंगे, क्या क्या करेंगे, क्यों? बच्चे के सामने। वो अभी कुछ अपनी बात सुन भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता, फिर भी 6-6 महीने के बाद वो भी मामा पापा बाबा कुछ न कुछ बताते हैं, कहना शुरू करता है। वो तो समझता है, वो भी कुछ न कुछ समझता है, ग्रहण होता है, वहां ग्रहण चलता है। तो ऐसा नहीं समझना कि हमें ये बहुत कुछ कठिन बातें हैं, क्यों? तो ये जो क्षयोपशम होता है उसको हमको समझना है, क्या है क्षयोपशम? सर्वघाती में क्षयोपशम हो नहीं सकता, ये बात अभी हमने देखी। तो क्षयोपशम कौन सी प्रकृतियों में होगा? देशघाती प्रकृतियों में। अभी वहां देशघाती की लिस्ट लगाई थी हमने कल, नहीं वो निकाल दी, कोई बात नहीं। इसी पुस्तक में आगे है 54 पृष्ठ पर हिंदी में, गुजराती में 1-2 पृष्ठ आगे होगा। यानी ये जो क्षोभम भाव घटित होंगे ये देशघाती प्रकृतियों पर घटित होंगे। अभी उसमें वो संयम असंयम वगैरह घटित करते हैं, उसके जो दूसरी अपेक्षा है उसको भी हम जनरल स्थूल रूप से बात कर रहे हैं। तो अभी मति ज्ञानावरण ये देशघाती प्रकृति है, तो मति ज्ञानावरण में सर्वघाती भी स्पर्धक है और देशघाती भी स्पर्धक है। अभी हम मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वाले हैं इतना तो मालूम है, बरोबर? हमारा ज्ञान प्रकट है, हमें पता चलता है ना, हम जान रहे हैं या नहीं जान रहे। नहीं जान रहे ये भी ज्ञान में आया ना। गणित नहीं समझ रहे ये भी, इसका भी ज्ञान हमें हो रहा है। यानी हम ज्ञान कर रहे, जान रहे, ये तो एहसास है हर जीव को, आबाल गोपाल सबको ये एहसास है। तो क्या है? तो ये जो देशघाती प्रकृति, अभी हमने मति ज्ञानावरण की बात करेंगे। मति ज्ञानावरण में सर्वघाती भी स्पर्धक है और देशघाती भी स्पर्धक है। अभी हम परिभाषा पर लगाएंगे। वर्तमान कालीन जो सर्वघाती स्पर्धक है उसका उदय का अभाव है, उसी को हम कहेंगे उदयाभावी क्षय। फिर भविष्य में ये जो सर्वघाती स्पर्धक पड़े हैं वो अपनी जगह में रहेंगे, अपनी जगह छोड़कर जल्दी उदय में नहीं आएंगे, उसको कहते हैं सदवस्था रूप उपशम। तो उदय तो चलेगा, तो उदय देशघाती का चलेगा। तो देशघाती का स्वरूप क्या है कि पूरा घात नहीं करना, देश यानी एक देश, पार्शल घात करते हैं, परंतु फिर भी कुछ न कुछ ज्ञान वहां प्रकट होगा। इस तरह से ये मति ज्ञानावरण है, शुद्ध ज्ञानावरण है, उसमें एक क्षयोपशम घटित होता है। अभी हम अवधि ज्ञानावरण पर घटित करेंगे। अवधि ज्ञानावरण ये प्रकृति कैसी है? देशघाती प्रकृति। उसमें स्पर्धक सर्वघाती के भी है और देशघाती के भी है, बराबर? अभी मुझे अवधि ज्ञान नहीं है तो मेरे केस में अभी क्या चल रहा है? सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। प्रकृति भले देशघाती है अवधि ज्ञानावरण, पर मेरे अभी उसके सर्वघाती का उदय चल रहा है, सर्वघाती स्पर्धकों का। तो ये औदयिक अज्ञान कहलाएगा। कल बात हुई थी ना क्षयोपशमिक अज्ञान और औदयिक अज्ञान की। मुझे अवधि ज्ञान प्रकट नहीं है क्योंकि मेरे अवधि ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, यह मेरा अवधिक ज्ञान संबंधी यानी अवधिक ज्ञान नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे? औदयिक अज्ञान। मनपरे ज्ञान में भी ऐसा ही लागू होगा। मनपरे ज्ञान है तो देशघाती प्रकृति, परंतु अभी हमारे सबके उसका सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, तो किसी का भी मनपरे ज्ञान प्रकट नहीं है। वो तो छठे गुणस्थान से आगे होने को ही प्रकट होगा, हमारे आपके किसी को होने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि ऐसा ही उसका नियम है, है? तो अभी उसका सर्वघाती का उदय है, तो ये हमारा औदयिक अज्ञान है। एक क्षोभम तो इतनी है, हम क्षोभम शब्द तो हम बहुत बार शास्त्र हैं, ये हमारा क्षोभम बहुत है, हमारा क्षोभम कम है, क्षोभम के पीछे मत दौड़ना आदि आदि बातें आती है ना, क्यों? तो इसको कहते हैं क्षोभम। अभी नियम ऐसा है, सम्यक तो होने के पहले भी ज्ञानावरणादि समस्त प्रकृति जो है उनके जो स्पर्धक है, उनका जो अनुभाव है, वो अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना हीन होते चला जाता है प्रति समय। अभी ज्ञानावरण का अनुभाव कम होगा तो ज्ञान आवरण कम होगा तो क्या होगा बेन? ज्ञान खुलेगा ना, तो जितना मोक्ष मार्ग में जी लगता है, तत्व विचार करने लगता है और ऊपर के गुणस्थानों में जाता है, तो ज्ञान तो बहुत खिलता है। अब उसको अन्य जीव अन्य चीजों की रुचि नहीं है तो उसका ज्ञान कहाँ लगेगा? शास्त्र में लगेगा। और ज्ञान का विकास भी यहां हो रहा है तो सहज रूप से उसके ये कितनी बातें ख्याल में आती है, क्षोभम उसका सहज बढ़ता है। क्षोभम की कोई रुचि नहीं है उसको, ख्याल है ना? तो क्षोभम बढ़ाने की रुचि नहीं होते हुए भी सहज उसका क्षोभम बढ़ता है। ये शिवभूति तो कोई बहुत एक्सेप्शनल होता है, जैसे ग्यारहवें गुणस्थान में से गिरकर पहले में जाने वाला कोई बहुत रेयर होएगा, तो हमने तो सबको ही ग्यारहवें में से पहले में भेज दिया, ऐसा नहीं होता है, ख्याल है ना? तो परंतु एक भी जीव जाता है तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में है और वो उसका जरूर कथन करेंगे। तो ऐसे शिवमूर्ति तो बहुत कम अल्प प्रमाण में होते हैं। हमने तो शास्त्र में से उनको ही पकड़ा, क्यों? क्योंकि हमको पढ़ाई नहीं करनी। इन्हें अपना अभिप्राय कहां पड़ा है इसको जरा टटोलना, ख्याल है ना? तो सहज रूप अनेक मुनि तो कितने पूर्वधारी अंगधारी वो सब ऐसे करके शबक श्रेणी चढ़ते हैं। हाँ, जो जिसको जो देखना है वही देखेगा ना। हो गया सब? हाँ, प्रश्न। आपका ऐसा प्रश्न है, औगी ज्ञान की पर्याय चल रही है। अभी आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो उपयोग रूप की बात करते हैं, तो ज्ञान की पर्याय लब्धि उपयोग मिलकर वो पूरी ज्ञान की पर्याय है। तो हरेक कर्म के अपने अपने निषेक है, तो वहां अवधिक ज्ञान में भी उसका वो देशघाती का उदय चल रहा है और सर्वघाती ऊपर रहे, जिस प्रमाण में अवधि है उस प्रमाण में उसके पर्याय में हम ज्ञान की पर्याय कितने हैं, तो वो तीन ज्ञान वाली कहेंगे हम, क्योंकि सभी जो निषेक है वो खिल रहे हैं ना उस समय। उपयोग रूप में एक कोई ज्ञान होगा, उपयोग मति ज्ञान में होगा तो उस समय शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान वो तो लब्ध रूप रहेंगे, परंतु प्रकट पर्याय में है। हाँ, प्रकट पर्याय कितने वाले? तो हम कहेंगे ना चार ज्ञानधारी है, तीन ज्ञानधारी है, दो ज्ञानधारी है, तो वो उसकी चल रही है प्रकट पर्याय चल रही है उसकी। हाँ, क्षोभम चल रहा है। हाँ, क्षोभम चल रहा है, तो क्षोभम से उसको अवधि ज्ञानी हम भी कहेंगे, क्योंकि अवधि ज्ञान तो हर समय मुनि नहीं लगा रहे, कोई रेयर कभी लगा के देखेंगे। जैसे तीर्थंकरों के जीव को अवधि ज्ञान है वो कभी उसका उपयोग नहीं करते, तो हम उसको अवधि ज्ञानी कहेंगे ना, तो क्षोभम की अपेक्षा से ही उनको अवधि ज्ञानी आदि कहने में आता है, उनका उतना क्षोभम चल रहा है। उदय उस रूप नहीं है, सर्वघाती रूप से उदय नहीं है, वो देशघाती होकर उदय में आते हैं। हाँ, वही वाले वो देशघाती है, और वहां भी वो परमाणु निकल जाएंगे, फिर भी उसका अपने रूप से उदय नहीं हो रहा है। उसका अपने रूप से जो सर्वघाती का फल मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिल रहा है, वो देशघाती के जो परमाणु पड़े उनका फल मिल रहा है।
ये बाकी बच जाएंगे,
बाकी
बच जाएंगे ये बात के लिए, उस समय निकल जाएंगे।
नहीं, हाँ उस समय वो निकल ही जाएंगे, देशघाती रूप से निकल जाएंगे, वर्तमान में जो आया है उदय में वो तो निकलने ही वाला है, वो अभी बचता नहीं है। हाँ, एक समय में होने वाले परिणाम में ये सर्वघाती देशघाती दोनों ही बनते हैं। हम देखते हैं पांचों ज्ञानावरण बनते हैं, अभी सभी एक समय के परिणाम से आठों ही कर्म बनने की ताकत है ना, आठों ही कर्म बनते हैं। उसके लिए हर कर्म के लिए अलग अलग परिणाम थोड़े कर रहे जी, एक ही परिणाम से आठों ही कर्म बनते हैं। अभी आयु कभी कभी बनती है उसके बाद छोड़िए, आठों ही कर्म बनते हैं और उसमें भी हरेक कर्म परमाणु में अलग अलग शक्ति है। इससे क्लियर होता है वो निमित्त से कुछ नहीं होता, कर्म परमाणु अपनी योग्यता से बंध रहे अपनी योग्यता। चलो अभी समाप्त करते हैं, समय हो चुका है। बोलो भगवान महावीर की जय।